ओम शांति। आज भी बाबा की मुरली में हम सभी ने एक महावाक्य सुना कि जब मैं राजयोग सिखाकर समाप्त कर देता हूं तब विनाश होता है। हम हमेशा ऐसा देखते आते हैं इस जीवन में कि बाबा के द्वारा सिखाया गया राजयोग यद्यपि पहले दिन से अपने में संपूर्ण है, परंतु जैसे जैसे अभ्यास आगे बढ़ता है पता चलता है कि दिनों दिन योग और होता जाता है। जितनी सूक्ष्मता से हम उसका अभ्यास करते हैं योग में भी रस भरता है और जीवन में भी रस भरता है। तो मुझे सबसे पहले आज ये बात सुनकर बहुत अच्छा लगा, जानकी दादी के मुख से सुनी मैंने कि आप में से किन्हीं ने कहा है कि हमें वही बातें सुनाई जाएं जो अनुभव की हों, ऐसा कहा है ना। मुझे लगा कि जिसने कहा है उसने भी बड़ी साहस का काम किया है, समझदारी का काम भी है, क्योंकि जो कोई भी यहाँ स्टेज पर बैठकर आपको कुछ सुनाता है वो आप जानते हैं, कुछ बहुत नई बातें नहीं बताई जा रही हैं, परंतु जब किसी भी बात को अनुभव का रंग चढ़ जाता है तो वो बात सहज होती है, दिल को छूने वाली होती है। मैं जब एक अपने दिल की बात आप सभी के सामने रखूं तो मैं जब भी आप सभी बहनों को देखता हूं जिन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया है तो मुझे बहुत सारे विचार एक साथ मन में आते हैं कि आज संसार की ओर अगर हम नजर दौड़ाएं तो सब कुछ छोड़ देना तो सहज हो सकता है, लेकिन जीवन को समर्पित कर देना अपने में सबसे बड़ी कुर्बानी है। तो निश्चित रूप से वो सभी आत्माएं, भले ही बाबा की प्रेरणाएं भी साथ में जुड़ी हुई हैं, परंतु जिन्होंने अपने जीवन को एक नए रास्ते पर, नई विचारधाराओं पर, त्याग और तपस्या के जीवन पर चलाने का साहस किया, अपनी सभी इच्छाओं को एक तरफ रख के ऐसा तपस्या का जीवन अपनाया, वो कितने महान हैं। परंतु कभी कभी क्या होता है, हम सभी जो समर्पित जीवन में चलते हैं, बहुत सुंदर जीवन है, समर्पित होते ही हम सबको इसकी प्रत्यक्ष प्राप्तियां, निश्चिंतता, खुशी, तो भी बहुत सारी सहज तुरंत प्राप्तियों का अनुभव होता है। परंतु चलते चलते हम अपनी कुर्बानी के महत्व को स्वयं हल्का कर देते हैं, जिस कारण हमारा समर्पित जीवन साधारण जीवन में बदल जाता है। तो बाबा भी हमेशा कहते हैं और हम सब जानते हैं इस बात को, अपने इस समर्पित जीवन को जितना महत्व हम स्वयं देते हैं उतना ये जीवन महत्वशाली बन जाता है। संसार भी उतना ही हमें महत्व देता है जितना हम अपने को महत्व देते हैं। तो हम सभी जिन्होंने अपने इस जीवन को कुर्बान किया है, कुर्बान सब और सुंदर है हम सबके लिए, उन्हें अपने एक एक संकल्प का, एक एक बोल का, अपनी भावनाओं का, अपने देखने का, व्यवहार का पूर्ण महत्व होना चाहिए। और एक एक चीज का जितना महत्व हमें स्वयं होगा उतनी ही वो चीज शक्तिशाली बनेगी। संकल्प का अगर महत्व है, संकल्प श्रेष्ठ होंगे, साइलेंस पावर बढ़ेगी। हमें अगर अपने स्वयं बोल का स्वयं महत्व है तो किसी को हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ऐसा बोलो और ऐसा न बोलो, स्वतः ही हमारे बोल वैसे हो जाएंगे जिनको बाबा सबसे ऊंचे बोल कहता है, वरदानी बोल, सबसे ऊंचे सम्मान देना प्यार से बोलना, नम्रता से बोलना, ये सब के भेद में बहुत छोटी बातें हो जाती हैं, वरदानी बोल हो जाएंगे हम सबके। कर्मों पर अगर हमें स्वयं में महत्व होगा तो हमें पता होगा, हमें एक नेचुरल स्वरूप में ये स्मृति रहेगी कि हमारे कर्म उनके कर्म हैं जिनके कर्म विधान बनते हैं। जो कुछ हम कर रहे हैं वो न केवल दो युगों के लिए बल्कि भक्ति काल के लिए भी विधान बन रहा है। वो महत्व हमें स्वयं हो जाएगा और हम जान सकते हैं तब हमारा पुरुषार्थ कितना श्रेष्ठ होगा, आदर्श होगा। समय के अनुसार हम सब इस बात को अच्छी तरह जानते हैं और बाबा के महावाक्य सुन सुनकर महसूस करते चल रहे हैं कि हम उस सुंदर समय की ओर बढ़ रहे हैं जिसे इस संगम युग का भी हम गोल्डन पीरियड कहें, प्रत्यक्षता का समय, जो बहुत स्वर्ण काल है, जिसमें वास्तव में वो घटनाएं संसार में होंगी, संगम युग पर होंगी, जिनकी शायद हम सभी को अभी तक कल्पनाएं भी नहीं है, हमें इतना विचार ही नहीं है कि प्रत्यक्षता का कितना सुंदर पार्ट होगा, कितना सुंदर दृश्य होगा। अगर हम उसकी एक दो बात को ही देखें तो जैसे हम बाबा से मिलकर आनंद ले रहे हैं, जैसे हम बाबा से मिलकर अपनी मनोकामनाओं को पूरा होते देख रहे हैं, सब कुछ बाबा से अनुभव कर रहे हैं, वरदान की और पूर्ण संतोष जीवन में ला रहे हैं, वैसे ही जैसे भगवान हमें मिला, संसार के सभी भक्तों को उनके इष्ट देव और देवियां प्राप्त हो जाएंगे। और वो हम जानते हैं कौन है, वो हम सभी हैं। तो हम सभी का इतना सुंदर स्वरूप होने जा रहा है, जबकि हम सभी के बोल वरदानी होंगे, हम सभी से मिलकर आत्माएं वो अनुभव करेंगी जो हम बाबा से मिलकर करते हैं। जैसे बाबा के द्वारा हमारी इच्छाएं पूर्ण होती दिखती हैं हमें, भक्तों को हमारे द्वारा अपनी इच्छाओं को पूरा होने का अनुभव होगा। तो जब ऐसे सुंदर समय की ओर हम बढ़ रहे हैं, वास्तव में जिसकी सारे संसार को इंतजार है, हमारी इंतजार तो पूरी हुई, अब संसार को इंतजार है, तो ऐसे सुंदर समय में प्रवेश करने के लिए और हम सबका भी उसमें सुंदर पार्ट हो, जब हमें वो देखें तो वही दिखाई दे जिसे वो देखना चाहते थे, हमारे बोल सुनकर उसे वही प्राप्त हो जो वो प्राप्त करना चाहते थे, तो हमें अपने इस वर्तमान समय को जैसी बाबा की प्रेरणाएं हैं, बहुत अधिक योगयुक्त, बहुत अधिक अपने श्रेष्ठ स्वमान में स्थित करने का दृढ़ संकल्प करना चाहिए। इस योग के सब्जेक्ट में यद्यपि आप सभी योग के टीचर हैं, सारे संसार को योग सिखाते हैं, परंतु सबसे पहली चीज कि योग का शौक हमें कितना है, हमारा योग इस बात पर आधारित है। हम जानते हैं जिस चीज का हमें शौक होता है उसके लिए हम स्वतः ही सब कुछ निकाल लेते हैं, समय भी निकाल देते हैं, प्लानिंग भी कर लेते हैं। सेवा या कोई भी कार्य जिसका हमें शौक है उसके लिए हमारे पास सब कुछ है, और शौक ही किसी चीज को सरल बनाता है। अगर शौक न हो, जबरदस्ती किसी काम को हमसे कराया जाए, तो हम जानते हैं हमारे मन की स्थिति कैसी रहती है। तो पहली एक चीज योग के महत्व को समझते हुए कि कितना अधिक महत्व है इसका, हमें अपने मन में इसके लिए शौक जागृत करना होगा। लेकिन ये एक ऐसा सब्जेक्ट है क्योंकि बहुत सूक्ष्म है, इसलिए इसके अनुभव हमें शौक पैदा कराते हैं। एक पहले हम इच्छा जागृत करते हैं अपने मन में, हमें योगी बनना है। दूसरे इसके अनुभव हमारे शौक में वृद्धि कर देते हैं। मुझे एक छोटी सी बात याद आई, जब हम समर्पित होकर यहाँ आए, बाबा का समय भी ऐसा ही था, एक संकल्प रहता था मन में कि हम क्यों समर्पित हुए हैं। मैंने एक मास तक रोज अपने पास रोज एक एक पेज लिखा, मैं समर्पित क्यों हुआ हूँ। संसार में बहुत सारी इच्छाएं थी मेरी भी, मैंने उन सबको छोड़ दिया और इधर आ गया हूँ, मैं क्यों। एक ही उत्तर मिलता था, आवाज आती थी अंदर से, महान योगी बनने, तुम्हें और कुछ नहीं करना है, तुम्हें इस संसार को देखना ही नहीं है, तुम्हें और किसी उलझन में जाना नहीं है, महान योगी बनना है, वही करना है इसी के लिए तुम आए हो। और इस एक संकल्प ने शौक पैदा किया जीवन में योग का बहुत अधिक, और मुझे बहुत खुशी है इस बात की। आज जब मैं अपने इस जीवन में पीछे मुड़कर देखता हूँ तो वही बात कि बाबा की प्रेरणाओं के अनुसार मैंने बहुत ध्यान रखा कि मैं अपने इस जीवन को कहीं भी उलझाऊं नहीं, कहीं भी टकराव में न लाऊं। पूरी सफलता मिली उसमें। टकराव एक ऐसी चीज है जिसमें हम खुद को खुद ले जाते हैं। शिकायत हम ये कर देते हैं कि दूसरा हमसे टकराता है, पर टकराते हम स्वयं हैं। हमने ये बात महसूस कर ली और शौक बढ़ने लगा योग का, क्योंकि ये एक छोटी ऐसी बात है जो योग के शौक को ढीला करती है। अब हम जब आगे बढ़ते हैं इस सब्जेक्ट में, मैं आपको अनुभव के रूप से ये बात आपके सामने रखता हूँ। शुरू में योग की हमारे पास एक ही परिभाषा थी, अपने को आत्मा समझ, बाबा को याद करो, रूढ़िहान करो, नशे में भी रहो। जैसे जैसे हम आगे बढ़े, सूक्ष्मता हमें प्राप्त हुई, हमें ऐसे लगने लगा कि सारी अव्यक्त मूल्यां ब्रह्मा बाबा का अनुभव है। मैंने अव्यक्त मूल्यों को पूरा ही समय, 20 साल होने को आए हैं, लगभग ब्रह्मा बाबा के अनुभव के रूप में देखा। भले ही वो शिव बाबा ने बोली हो या बाप दादा ने बोली हो, लेकिन वो जैसे एक ब्रह्मा का अनुभव था। उसने क्या क्या किया होगा अपने पुरुषार्थी जीवन में, किस तरह उसने अपनी स्मृतियों को बहुत ऊंचा उठाया, पहले ही क्षण किस तरह वो ब्रह्मा बन गए, उनका भविष्य का नशा एकदम टॉप पर पहुंच गया। ये क्यों मैं आपको सुना रहा हूँ? योग के संबंध में सबकी केवल एक ही शिकायत है, दूसरी नहीं, कि जब योग में बैठते हैं तो बुद्धि इधर उधर जाती है। बस अगर ये एक बात हल हो जाती है तो योग तो जीवन का रस है हम सबके। तो हमने सदा ही इस बात की खोज के रूप में मुरलियों को देखा कि बाबा ने किस तरह अपने मन को संपूर्ण रूप से एकाग्र किया होगा। बाबा की मुरलियों से ये स्पष्ट आभास होता रहा। तो हमने ये देखा पूरे अव्यक्त इस पार्ट में कि कैसे बाबा ने हम सबके सामने हमारे स्वमान को सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप दिया। कभी हमें बाबा ये नशा चढ़ाया करते थे कि तुम्हें नशा नहीं चढ़ता, तुम्हें भगवान मिल गया। हमें याद है साकार में बाबा कहते थे कि तुम्हें नशा नहीं चढ़ता, भगवान बैठकर तुम्हें पढ़ा रहा है, तुम्हें इतना नशा चढ़ना चाहिए कि दिमाग की नस फट जाए, इतनी खुशी हो जानी चाहिए। ये कहने का बाबा का तरीका था कि जिसके सामने भगवान बैठा हो और उसे नशा ही नहीं चढ़ता। धीरे धीरे हमने देखा नशे कैसे सूक्ष्म होते गए और आज कहां नशे आ गए हम सबके, कहां बाबा हमें हमारे स्वमान की ओर ले आया कि तुम वैसे ही हो जैसे मैं। मैं सोचता था इस बार बाबा के महावाक्य सुनकर कि अब से 8-10 साल पहले बाबा कहते थे कि तुम्हारे हाथ में मैंने चाबी दे दी है, जो चाहे खजाने प्राप्त करो। और चाबी कौन सी है? बाबा। थोड़े सालों के बाद हमने उसमें परिवर्तन देखा। बाबा ने कहा कि नहीं, सब खजाने खुले हैं, कोई चाबी ताला नहीं है, जो चाहे ले लो। फिर वो अभ्यास चला और अब हम 2 साल से देखा, इस साल तो पूरी तरह देखा कि बाबा कहता है जो कुछ मेरा है वो तुम्हारा है, इतना ले लो और उतना ले लो ये भी बात नहीं, जो कुछ मेरा है वो सब कुछ तुम्हारा है। अगर मैं सर्वशक्तिवान हूँ तो सर्वशक्तियां तुम्हारी सेवाधारी हैं, अपने इस नशे में स्थित हो जाओ। तो सबसे बड़ी चीज है मन की इस भागदौड़ को रोकने के लिए कि हम अपने स्वमान को कितना स्वीकार कर पाए हैं, कितना उसमें स्थित हो पाए हैं। बाबा ने तो हमको स्पष्ट कहा, जो मेरा वो तुम्हारा, लेकिन क्या हमारे अंतर मन ने इस बात को इसी रूप से स्वीकार कर लिया? या हमारी स्थिति ऐसी तो नहीं है? मैं हमेशा सोचता हूँ कि जैसे अगर किसी राजा को बच्चा न हो और उसने किसी को एडॉप्ट करके राजकुमार बना लिया हो, एक गरीब के बच्चे को निकाल कर राजकुमार बनाया, अब वो राजकुमार महल में आ गया, लेकिन उसे अभी तक ये आभास नहीं हो रहा कि ये सारा महल मेरा ही है, ये सारा खजाना मेरा ही है और ये राजाई मेरी ही है। उसे अभी तक भय है, उसमें अभी तक वो अथॉरिटी आ नहीं रही है। मंत्री उसे बार बार याद दिलाता है, तुम मालिक हो अब इस सारी राजाई के, ये सब खजाना तुम्हारा है, राजा अब तुम्हें गद्दी देना चाहता है। और धीरे धीरे उस बच्चे को वो याद आता है, वो पुरानी बातें भूलती हैं, वो गरीबी के संस्कार, वो छोटापन, वो हीन भावनाएं, निकल के उसको नशा चढ़ता है कि मैं राजा हूं। तो कहीं वही स्थिति तो हमारी नहीं है कि ऑलमाइटी हमें रोज याद दिला रहा है कि तुम ये हो, और पुरानी स्मृतियां हमारे मन से निकल ही न रही हो, हमारा मन स्वीकार ही न कर रहा हो कि सचमुच मैं यही हूं। इस बार की मुरली अव्यक्त एक मास्टर ऑलमाइटी पर चली है, बाबा की बहुत प्यारी मुरली, जिसमें बाबा ने कहा कि अगर तुम, कितना अच्छा योग का एक तरीका है कि अगर तुम अपने को मास्टर ऑलमाइटी के टाइटल में स्थित रखो तो क्या हो जाए, क्या हो जाए, सारी शक्तियां तुम्हारी सेवाधारी बनकर ऑर्डर का इंतजार करें। कितनी बड़ी बात, एक और हम एक एक शक्तियों को इकट्ठा करने के लिए पुरुषार्थ करते हो कि मेरे अंदर सहन शक्ति नहीं है। कोई कोई सारा जीवन भर शिकायत करते आए हैं, मेरे अंदर सहन शक्ति की बहुत कमी है, आ ही नहीं रही, मेरे अंदर समाने की शक्ति है ही नहीं। एक और एक एक शक्तियों का चिंतन और उनको इकट्ठा करने का अभ्यास, और दूसरी ओर वो हमें खुद कह रहा है कि जब से तुम मेरे बने हो मैंने सारी शक्तियां तुम्हारे हवाले की हुई हैं। इस बात को महसूस कर लो, तुम्हारे ही पास है वो, केवल अपने स्वमान में स्थित हो जाओ। तो जितना श्रेष्ठ स्वमान हमारे पास आ जाता है, हमारा ये संकल्प शक्ति सहज एकाग्र हो जाती है। बस अपने मन को एकाग्र करने का यही सुंदर तरीका बाबा ने सुनाया है, अपने श्रेष्ठ स्वमान में स्थित हो जाओ। ये नशा है बहुत सुंदर, लौकिक में भी नशा ही मनुष्य को शांत करता है, यहाँ भी ये नशा, लेकिन हमारा नशा दिनों दिन सूक्ष्म होता चले, हमारा नशा वही न हो। और नशे के बाद हमें एक बात और ध्यान रखनी, कभी कभी हम कह देते हैं कि हमने सोच लिया मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, नशा तो चढ़ा ही नहीं, कुछ हुआ नहीं, सोच लिया मैं बहुत भाग्यशाली आत्मा हूँ, कुछ भी नहीं मजा आया, मन के संकल्प तो बंद हुए नहीं, अभी योग में बैठे और सोचा मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ, और दूसरे ही क्षण दूसरे संकल्प शुरू हो गए, तो क्या करें? इसके लिए बाबा ने इस बार कुछ अच्छी अच्छी बातें हम सब के ध्यान में सार रूप से दी। जैसे कहा, नशा कब चढ़ेगा? बोतल अगर अलमारी में रखी हो, याद है ना बाबा के महावाक्य, तो नशा नहीं चढ़ेगा, उसको पीना पड़ेगा। तो पीने का अर्थ केवल एक संकल्प कर लेने से नहीं हो जाता, लेकिन उस संकल्प का हमें चिंतन करना होगा। मैं पद्मापदम भाग्यशाली हूं, इस अगर एक हम स्वमान को लें तो इसको लेकर यहीं छोड़ न दें, इसको पीने का अर्थ है अब इस पर हमारा चिंतन हो। देखो कितने भाग्यशाली हैं हम, बहुत सारी बातें आज तक बाबा ने बताई है कि सवेरे भगवान स्वयं उठाने आता है हमें, हम सोए होते हैं हमारा द्वार खटखटाता है, सारे खजाने लेकर आता है, ऑफर करता है कि ले लो ये तुम्हारे ही लिए हैं। कितना बड़ा भाग्य है हमारा जो इस बार बाबा ने भाग्य से भी आगे की बात हमारे आगे रख दी कि भाग्य की रेखा खींचने की कलम भी तुम्हारे हाथ में है, इस बार वो भी दे दी। हम समझ सकते हैं इसके अनुसार कैसे समय अंत में पहुंचता जा रहा है। कवि कहते थे बाबा भाग्यशाली हो, पद्मा पदम भाग्यशाली हो, पीछे कहते थे मास्टर भाग्य विधाता हो, और इस बार कहा ये जो कलम मेरे हाथ में थी ये भी तुम ले लो। तो इतना बड़ा भाग्य है हमारा कि अपने और दूसरों के भाग्य की रेखाएं खींचने की कलम भी हमारे पास है। इस तरह जब हम एक बात का चिंतन करेंगे कि कितना बड़ा भाग्य है हमारा कि भगवान ने हमें चुनकर अपने कार्य की जिम्मेदारी दी, भगवान ने हम पर कितना विश्वास रखा होगा, किसी को भी इतने बड़े काम की जिम्मेदारी बिना विश्वास के नहीं दी जा सकती, तो उसने हमें कितना योग्य देखा होगा, कितना भारी विश्वास किया होगा हम पर कि यही मेरे रतन हैं जो मेरे इस दिव्य कार्य को संपन्न कर सकते हैं। तो इस तरह जब हम एक बात को लेकर उसका चिंतन थोड़ी देर करेंगे तो हम उस स्वमान में स्थित हो जाएंगे और वही बात हमारे मन को एकाग्र कर देगी। तो मन को एकाग्र करने का तरीका अथवा अपने को आत्मा समझने का तरीका, जो हमारा पहला लेसन है, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। अपने को आत्मा समझने का श्रेष्ठ स्वरूप है अपने श्रेष्ठ स्वमान में स्थित हो जाना, क्योंकि हमारा ये जीवन न केवल हम यहाँ बैठे हैं आज योग भट्टी है इतने तक है, लेकिन पूरा जीवन हमारा योगी जीवन है। एक दिन की बात नहीं, इस सारे जीवन में योग हमारे मिल जाए, अविनाशी अंग बन जाए इस जीवन का। हालांकि बहुत सहज बात तो नहीं है, परंतु हम अनुभव से एक बात जानते हैं कि जिस आत्मा के पास श्रेष्ठ संकल्प रचना जितना आता है, यानी जो जितने अच्छे से अच्छे संकल्पों की रचना करना जानते हैं, वो उतना ही इस योग का आनंद ले पाते हैं। मैं आपको एक छोटा सा अनुभव, एक ऐसा ही सीजन था बरसात का, 3 मास जबकि हमें खाली रहते थे, मेरे पास एक बहुत अच्छा संकल्प आया जैसे ही बरसात शुरू हुई, और वो संकल्प बहुत छोटा लेकिन इतना सुंदर था, जिसने मुझे 3 मास बाबा की याद का आनंद लेने में सबसे बड़ी मदद की। और वो संकल्प ये था कि देखो तुमने इन ईश्वरीय मिलन के दिनों की कितनी इंतजार की थी, जन्म जन्म तुम सोचते आए थे कि कब वो दिन आए कि भगवान हमारे सामने हो, अगर ऐसा दिन आ जाए तो हम उसके ही साथ रहेंगे, एक पल भर भी उससे बिछुड़ेंगे नहीं, तुम बार बार वायदे करते थे, तो अब वो दिन आ गया है, और ये दिन अगर समाप्त हो गए, हमारा शरीर आज छूट गया, संगम पूरा हो गया, तो ये मिलन का आनंद फिर नहीं आएगा। इसलिए दूसरा संकल्प आता था मन में, जी भर के मिलन मनाओ, ऐसा ना हो कि मन में प्यास रह जाए कि भगवान पास में भी आया लेकिन जी भर के मिलन नहीं मनाया, जी भरा नहीं अभी तक, ऐसा हमारे मन की आवाज न निकले। बस इस एक संकल्प ने, बहुत प्यारा संकल्प था ये, 3 मास चला, जब तक अगला सीजन आया बहुत अच्छे अनुभव हुए, हर बात से निकालता था यही संकल्प कि ये दिन लौट कर नहीं आएंगे, इसलिए जी भर के मिलन मनाओ। तो ऐसे जितना अच्छे से अच्छा संकल्प हम अपने पास निर्माण कर पाते हैं, उतना ही योग हमारे लिए रसयुक्त हो जाता है। बस ये एक बहुत अच्छा तरीका बाबा ने हम सबको दिया है, भंडार दिया है श्रेष्ठ संकल्पों का, शायद ही इतना बड़ा भंडार किसी के पास न हो, संसार में किसी के पास नहीं हो सकता। आपने सभी ने, बहनों ने भिन्न भिन्न तरह की लौकिक स्टडी भी की होंगी, किसी भी सब्जेक्ट को आप देख लें, दर्शनों को देखें या शास्त्रों को देखें या दुनिया के साइंस के सब सब्जेक्ट्स को देखें, मनोविज्ञान को देखें, कितना बड़ा भंडार जितना बाबा ने हमें दिया है, कितनी मुरलियां, साकार मुरलियां और अव्यक्त मुरलियां, एक बहुत श्रेष्ठ खजाना हमारे पास है। उनमें से अगर कुछ हम चुनकर अपने पास रख लें और उसके चिंतन से अपने मन को भरपूर रखें, तो हम योग का बहुत आनंद ले सकते हैं। दूसरा अनुभव इस योग के बारे में ये रहता है कि हमारा जो ये मन है, इसको एक विशेष चीज की तलाश रहती है, इसकी एक नेचर है, वो चाहता है हमेशा आनंद। मन को हमेशा आनंद चाहिए और इस आनंद की तलाश में ये मन चारों ओर दौड़ता है। अगर हम हरेक अपने मन का विश्लेषण करें, एनालिसिस करें, कहां जाता है ये, तो हम देख सकते हैं कि इसको आनंद की बहुत भारी तलाश है। कोई हंस बहल कर मन को आनंदित करना चाहता है, कोई बाह्य मुक्ता के द्वारा उसको आनंदित रखता है, कोई ज्यादा बोलता है। जब कोई व्यक्ति ज्यादा बोलता है तो अगर उसकी साइकोलॉजी को नोट किया जाता है तो बीज दिखाई देता है कि उसके द्वारा उसको आनंद मिलता है। अगर हम अपने मन को अच्छे संकल्पों के द्वारा आनंद देना सीख लें तो इस मन को कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमें अंतर्मुखी होने के लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा, आनंदित मन स्वतः ही अंतर्मुखी कर देता है। तो इस तरह बाबा ने जो बहुत अधिक जोर दिया है इस बार मनन शक्ति पर, हम सब जानते हैं चार मुरलियां चली बाबा की, अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग है। जैसे भोजन के द्वारा खून बनता है, खून अपना होता है, भोजन पराया था, वैसे ही ज्ञान अगर हम मनन करते हैं तो वो अपना बन जाता है। कितनी प्यारी बात है ये, बल बन जाता है ज्ञान। हम जब बहुतों से बात करते हैं तो देखने में आता है कि योग के लिए सबसे अधिक कठिनाई अगर कोई महसूस करते हैं, उसका एक बड़ा कारण मनन शक्ति की कमी। बहुत लोग हैं जो मनन शक्ति को महत्व नहीं देते हैं, सोचते हैं ज्ञान तो सारा हमारे पास है, अब क्या उससे हम नया निकालें। बाबा ने गहरी से गहरी बात हमें सुना दी और किस गहराई में हम जा सकते हैं। तो वास्तव में इस ज्ञान मनन का पहला स्वरूप है कि ज्ञान की जो बहुत ऊंची ऊंची बातें बाबा ने हमें बताई हैं, वो हमारी स्मृति में रहें। बहुत जोर दिया है बाबा ने इस बार स्मृति स्वरूप होने पर। हम ज्ञान भूल जाते हैं, ज्ञान भूले तभी टकराव हुआ, ज्ञान भूले तभी हमें निराशा आई, उदासी आई, अकेलापन लगा। जितनी भी निगेटिव बातें जीवन में आती हैं, वो ज्ञान की पावरफुल बातों को भूलने से ही आती हैं। मन भारी हुआ, हम भूल गए बाबा ने हमें क्या कहा हुआ है। बहुत प्यारे महावाक्य बोल दिए हैं कि बाप हजार भुजाओं सहित तुम्हारी मदद को तैयार है। हमने देखा कई सोच लेते हैं कल पता नहीं क्या होगा मेरे जीवन का। मैं बहुत स्पष्ट कहूँ, समर्पित होने के बाद 5-10 साल कईयों के जीवन में भय बना रहता है, पता नहीं कल हमारे इस जीवन का क्या होगा, कुछ ना हो जाए, क्योंकि ज्ञान की पावरफुल बातें भूल गई, हमें ये भूल गया। बाबा ने स्वयं कहा और हम स्वयं जानते हैं कि जो आत्माएं पवित्र हैं, पवित्रता स्वयं ही हमारी रक्षा है, और किसी की रक्षा की हमें कहां जरूरत है। जिन आत्माओं ने भगवान का हाथ पकड़ा है उनको और किसकी मदद कहां चाहिए। जिनके पास संसार का सबसे बड़ा खजाना हो उनको अपने भविष्य की चिंता करने की कहां जरूरत है। जो सबको निश्चिंत करने वाले हैं, सबको राह दिखा रहे हैं, जो सबके बोझ भर रहे हैं, उनको ये संकल्प कहां आ सकता है कि पता नहीं कल कुछ हो न जाए। तो इन सब के लिए और योग में रस लाने के लिए, श्रेष्ठ संकल्पों का बल भरने के लिए ये मनन शक्ति बहुत आवश्यक है। ज्ञान एक बहुत बड़ा बल है, जैसे योग बल है, जैसे पवित्रता का बल है, जैसे सेवाएं भी बल हैं, ज्ञान भी अपने में एक बहुत बड़ा बल है। हमारे जीवन का ये एक अच्छा अनुभव होना चाहिए कि ज्ञान को भिन्न भिन्न समय पर हम बल के रूप में प्रयोग करें। तो ज्ञान का बल हमें योग युक्त रहने में मदद करेगा। इसके लिए मैं हमेशा एक छोटा सा सजेशन, छोटा सा सुझाव सबको देता आता हूँ कि हम सभी स्टूडेंट लाइफ से गुजर रहे हैं, तो हमारे स्टूडेंट लाइफ में जहाँ ज्ञान सुनना, सुनाना, देना, सेवाएं सब हैं, वहाँ रोज कुछ लिखना भी होना चाहिए। लिखना अपने में एक इतनी सुंदर बात है। क्यों सुंदर है? जब हम लिखते हैं, अगर आप 5 मिनट कुछ लिखते हैं, आप देख सकते हैं कि 5 मिनट के लिए मन बुद्धि एकाग्र हो गए। वैसे आप एकांत में जाकर कुछ सोचें, मन कहीं भी जा सकता है, लेकिन जब हमने लिखना शुरू कर दिया तो 1-2 मिनट के बाद ही मन चारों ओर से खींच कर एकाग्र हो गया। तो एक बहुत अच्छा अनुभव, रोज अगर हम आदत डाल लें कि 10 मिनट हमें कुछ लिखना ही है, तो एक बहुत अच्छा अनुभव 10 मिनट एकाग्रता का भी हमें होगा, और इससे हमारा मनन का बल बढ़ेगा। क्योंकि हमें ये एक स्लोगन जैसा ही बाबा का याद रखना चाहिए कि मनन से हमारा मनोबल बहुत बढ़ जाता है, जिसकी इस जीवन में हरेक आत्मा को अपने पुरुषार्थ के लिए भी और सेवाओं के लिए भी बहुत आवश्यकता पड़ती है। तो एक सरल सा रूप हम अपना सकते हैं, हमारे पास अव्यक्त मूल्यों का सार है, भंडार है, हमारे पास साकार मूल्यां भी कोई कोई बहुत सुंदर होती हैं, हम इनको पढ़ें और उसका सार लिखें। अब देखो, अगर आप किसी अव्यक्त मूल्य को पढ़ के 5-7-10 लाइनों में उसका सार लिखें, तो आपकी अपनी हो जाएगी वो मूल्य, बाबा की है उसके साथ वो हमारी भी है, ये हमें अनुभव हो जाएगा। और ये कितना सरल तरीका है जो हमें धीरे धीरे और बहुत सारी चीजें सिखाएगा, और वो सारी चीजें होंगी जो हम चाहते हैं कि नए नए पॉइंट्स हमारे ख्याल में आए, नई नई प्रेरणाएं हमारी प्राप्त हों। क्योंकि हमें आगे चलकर एक चीज की बहुत आवश्यकता पड़ेगी इस जीवन में, पीछे भी बाबा कह आए थे कैचिंग पावर और टचिंग पावर। और इसके साथ मैं हमेशा एक बात सोचता हूँ कि अब तक तो हम दो शब्द प्रयोग करते हैं, श्रीमत और मनमत, लेकिन ये भी एक बात सत्य है और होनी चाहिए कि जब हमारा मन अच्छे चिंतन में रहने लगेगा, जब हमारा मन निरंतर बाबा के साथ रहने लगेगा, तो बाबा के विचार और हमारे विचार पैरेलल हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। जो बाबा के विचार है वही हमारे विचार हो जाएंगे, और वही हमारे बोल वरदानी होंगे, वही हमारे सुझाव श्रीमत हो जाएंगे जो बाबा इशारे दे आए हैं। तो इस तरह जब हमें अपने मन को बाबा के मन के समान करना है, तो मनन शक्ति बढ़ाने पर हमारा मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। और मनन शक्ति जब हम अपनी बढ़ाएंगे इस तरह, ये जरूरी नहीं कि पहले दिन हमें बहुत अच्छे अनुभव होने लगे, किसी को भी पुरुषार्थ करने में कम से कम 1-2 या 3 मास एक बात का अभ्यास करना चाहिए, अभ्यास के बाद ही अनुभव होते हैं। कई बार अनेक पुरुषार्थी अपने जीवन में ये बहुत बड़ी गलती करते हैं कि जब बाबा कोई नई चीज बताता है उसका अभ्यास करते हैं 1-2 दिन, अगर अनुभव नहीं होता तो छोड़ देते हैं, सोचते हैं कोई अनुभव तो होता नहीं है। लेकिन एक अच्छे पुरुषार्थी को हमेशा ये सोचना चाहिए कि अनुभव की कई गति होती हैं, कई बार अनुभव इमीडिएट होता है, तुरंत अभी अभ्यास शुरू किया और अभी अनुभव हुआ। किसी आत्मा को अनुभव 3 दिन अभ्यास के बाद होगा, किसी को 8 दिन लगेंगे, किसी को 15 दिन, किसी को मास दिन। इसलिए बहुत धैर्यता से अभ्यास को बढ़ाना चाहिए। ये बहुत लोग मिसिंग करते हैं, 8 दिन अभ्यास किया, नहीं कुछ हो रहा, छोड़ दो। तो मैं चाहता तो था पूछना ही, लेकिन समय की सीमा बहुत कम है। फिर भी मेरा पहला प्रश्न तो यही है सबसे कि योग का शौक किस किस को है। शायद आपको आश्चर्य लगे मेरा ये प्रश्न सुन के, लेकिन फिर भी मैं पूछना चाहता हूँ कि योग का दिल से शौक किस किस को है। प्रश्न भी आश्चर्यजनक है, बहुत थोड़ी बहने हैं जिन्होंने हाथ नहीं उठाया, अधिक ने उठाया है। ऐसे ही पढ़ाई का शौक किस किस को है? आप कहेंगे सबको पढ़ाने वालों से ये अजीब सा प्रश्न पूछा जा रहा है, लेकिन हम जानते हैं पढ़ाई का अर्थ केवल मुरली सुनना और सुनाने तक नहीं होता। लेकिन जैसे लौकिक में स्टूडेंट लाइफ में देखा जाता है, कोई बच्चे जबरदस्ती पढ़ते हैं क्योंकि माँ बाप उनको मार पीट के भेज देते हैं स्कूल में, कहीं जा नहीं सकते, उन्हें पढ़ना ही पड़ेगा। और कुछ को जीवन में बहुत शौक होता है, उन्हें कोई कहे न कहे, टीचर पढ़ाए या न पढ़ाए तो अपने ढंग से भी वो पढ़ लेते हैं। तो पढ़ाई का शौक तो हमारी पहली शर्त होती है इस जीवन को दिव्य बनाने में, और दूसरी बात ये योग का शौक। अब तीसरी बात कि मनन शक्ति जिसका बाबा ने बहुत महत्व बताया और जिसके द्वारा हमें अब भी और आगे चलकर बाबा की अच्छी अच्छी बात प्रेरणाओं के रूप में प्राप्त होती रहती हैं, उसके अनुभव किसको हैं? कौन कौन अपने को मनन के सब्जेक्ट में एक्सपर्ट समझते हैं? एक्सपर्ट नहीं, जो जो मनन करते हैं वो हाथ उठाएं। नहीं, उठा रही हैं बहनें, तो बड़ा ही हाथ उठाती हैं। थोड़े हैं, नहीं ठीक है, आपने ठीक ही देखा। तो मनन शक्ति को बढ़ाने की आप सभी इस भट्टी से जरूर प्रेरणा ले जाएं। बहुत क्या, आप सब तो अनुभवी हैं ही, थोड़ा बहुत तो मनन सबका चलता ही है। एक्सपर्ट कहने का तो मेरा अर्थ केवल इतना था कि इतने एक्सपर्ट हो जाना चाहिए आप सबको भी कि आप सभी के पास ज्यादा चांसेस होते हैं सेवाओं के, कि अगर आप किसी कॉलेज में जाते हैं और आपको फौरन कहा जाए कि भाई बच्चों के लिए एक बहुत प्रभावशाली भाषण आप कर दो, तो आप उसके लिए तैयार हों। आप ये न सोचें कि कुछ समय दिया जाए तो जरा एकांत में जाके मनन कराएं, या आप क्या सुनाएं, बच्चे आत्मा और परमात्मा की बात सुन के तो मजाक करेंगे, तो उनको क्या सुनाया जाए। ऐसा एक्सपर्ट मेरा कहने का अर्थ ये था। तो इसमें जब हमारी मनन शक्ति बढ़ती है और योग शक्ति बढ़ती है तो हमें ये बहुत अच्छे अनुभव होते हैं कि जब आप कहीं बाहर भाषण करेंगे पब्लिक में, तो उनके मन की बात आपके मुख से निकलेगी। बहुतों ने आप में से अनुभव किया होगा ये, और ऐसी जगह भी जहां सुनने वाले बिल्कुल सुनने के लिए तैयार नहीं है, वो सुनने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि मनन से हमारे पास गहराई आती है स्वयं की। और जैसे आजकल हमारे सामने कॉलेज और स्कूलों की सेवाओं के चांस बढ़ते जा रहे हैं, सब आप समाचारों में सुनते हैं, गुजरात में इधर उधर लोग ऑफर कर रहे हैं कि आप चाहे एक पीरियड लो हफ्ते में और किसी भी तरह आप कुछ करो विद्यार्थियों के लिए। तो हमारे पास जितना बाबा के इस ज्ञान को हमने उनके अनुसार ढाल दिया होगा, क्योंकि पहली चीज किसी के भी लिए होती है हम उनके मन में इंटरेस्ट पैदा कर दें, तब तो वो हमारी योग की और आत्मा की बात सुनेंगे, नहीं तो नहीं। तो ऐसा एक्सपर्ट मनन शक्ति में सबको होना चाहिए कि जैसी आत्माएं सामने हैं उस तरह के बोल हमारे मुख के द्वारा निकलें और एक ऑडियंस को हम अपने कंट्रोल में ले सकें। वो हमें अपने कंट्रोल में न कर लें, लेकिन हमारे कंट्रोल में आ जाए सारी सभा। तो इसके लिए मनन शक्ति को बढ़ाने का अभ्यास और कम से कम 3 मास दृढ़ता के द्वारा कुछ लिखने पढ़ने का या टॉपिक्स पर लिखने का अभ्यास करना चाहिए। मेरे से तो बाबा ने यही कराया, अव्यक्त बाबा ने मुझे स्पष्ट पूछी थी ये बात एक बार बहुत साल पहले 72 में, और कुछ यही बात बताई थी बाबा ने मुझे। मुझे आज वो बाबा के शब्द बहुत प्यारे लगते हैं, तब कुछ समझ में नहीं आया था। बाबा ने कहा था कि मनन शक्ति बढ़ाओ तो इससे ये फायदा होगा कि जब आगे चलकर चांस मिलेंगे अपने को सफल अनुभव करोगे। मुझे पता नहीं था मुझे क्या चांस मिलेंगे और क्या सफलता उसमें होगी, लेकिन मैंने ये देखा कि मनन शक्ति जीवन के विघ्नों को समाप्त करने के लिए, सेवाओं के लिए, चाहे मगन स्थिति बनाने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट बात है। इस बार भी जो बाबा की मुरली अभी हमने सुनी तो मुझे वो बात अच्छी तरह नोट हुई कि विष्णु समान मगन स्थिति प्राप्त करने के लिए ज्ञान का मनन और बाबा से मिलन दोनों में मगन होना होगा। तो मनन शक्ति को बढ़ाने के लिए, तब जब मुझे बाबा ने ये बात कही थी तो मैंने इसको वरदान के रूप में ही स्वीकार किया था और रेगुलर रोज 100 टॉपिक्स पर लिखा था। 100 टॉपिक्स अपने में काफी ज्यादा होते हैं, लेकिन रोज मुझे 2 पेज लिखने ही थे, ये एक नियम बना लिया था। चाहे कितने बिजी हों, चाहे रात को बैठ के लिखें, और उस दृढ़ता ने मनन शक्ति को बहुत बढ़ा दिया। तो हमें अपने इस योग को शक्तिशाली बनाने के लिए मनन शक्ति को बढ़ाना ही है, ये तो इस भट्टी का वरदान होना चाहिए सबके लिए। अब हम वर्कशॉप का रूप दे दें, समय तो हो रहा है। तो योग तो हम सबको पता है कैसे करना है, लेकिन अगर हमें कहा जाता है कि आप एक घंटा योग में बैठो तो हम उसको सरल महसूस करते हैं या भारीपन? जो भारी में अच्छा ऐसा नहीं कह रही बहने, तो कह रही नहीं हल्का में, जो कहते हैं हल्का लगता है हमें तो वो हाथ उठाएं। ठीक है, योग तो एक ऐसा सब्जेक्ट है कि कभी भारी लग सकता है कभी हल्का, और हम सबके लिए क्यों नहीं हल्का होगा इतने समय से जब अभ्यास करते आ रहे हैं। लेकिन फिर भी हम केवल इतना कहेंगे कि अगर इस योग को हम भिन्न भिन्न तरीकों से अभ्यास में लाते हैं, बातें तो वही हैं, आत्मा समझना और बाबा से अपने को जोड़ देना, लेकिन अगर उसके हम वैरायटी अभ्यास कर लेते हैं तो बहुत अच्छे अनुभव हमें हो जाते हैं। मैं अभी अभी का बताऊं, हम लोग अपनी एक छोटी क्लास करते हैं रोज, कई उसमें ऐसे भाई थे जिनको रोज ही सवेरे योग में नींद आती, 3 मिनट का गीत बजते ही उनकी गर्दन झुकने लगती है, कितना भी वो फ्रेश मुरली सुन रहे हैं और जैसे ही ओम शांति शुरू हुआ और नींद आनी शुरू हुई, देर भी नहीं लगती। तो हमने उन सबको, उन्हें था कि हमें कोई नींद से छुड़ा दे, बहुत उन्हें बुरा लगता है और निराशा तो होती है, तो सवेरे के 45 मिनट के योग को 10 भागों में बांट दिया, 4-4 मिनट लगभग हुई, कि हर 4 मिनट एक बात का अभ्यास करना है। चलो 5 सही, 5 मिनट एक बात का अभ्यास करना है तो नींद खत्म हो गई, क्योंकि जब हर 5 मिनट नए थॉट वो अपने को देंगे, नहीं वो तो उनको लिखा दिया और अभ्यास करा गया, वो सब तो तरीके हो गए कि अभी तो टाइम हो गया है, तो वो तो एक सहज बात है, 5 बात भी रख सकते हैं, क्योंकि मुझे इन समस्याओं से खुद गुजरना पड़ा, मैं मुझे कोई लज्जा की बात नहीं इसमें कहने में, मुझे फ्रैक्चर हुआ और मुझे 1.5 मास खाट पे बैठना था, एक जेल थी आप जानते ही हैं, तो नीचे कहीं जा नहीं सकते, वहीं बैठना है। सवेरे उठे, हमने प्लान किया कि काम तो नहीं तो 2:30 बजे उठ जाया करें रोज सवेरे, और उसमें ये समस्या नेचुरल है, जो खाट पे ही बैठेगा नींद आएगी उसको, तो हमने तब ये अभ्यास किए कि उस 1 या 1.5 घंटे के समय को ऐसे 10-12 तरीकों से अभ्यास किया जाए, तो इतना अच्छा होता है उसमें कि तन और मन दोनों फ्रेश हो जाते हैं। मन की सुस्ती का आधार भी तन की सुस्ती का आधार भी मन पर ज्यादा होता है, कहीं कहीं तन मन को खींचता है पर मन ज्यादा प्रभाव डालता है, तो उससे योग में बहुत सरलता हुई। जैसे सरल रूप से आप जब जानते हैं, बाबा ने कहा कि अपने को छत्र छाया के नीचे समझो, तो हम लोगों ने एक चित्र बनाया बहुत अच्छा, छत्र छाया का बड़ा रमणीक चित्र, कि बाबा शिव बाबा ऊपर से चला, थॉट्स आप देखें कैसे क्रिएट किए कि ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों ऊपर से चले, हम देखते हैं कि नीचे आ रहे हैं दोनों, शिव बाबा हमारे सिर के ऊपर आकर छत्र बन गया, छतरी जैसा, और ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, उसकी डंडी अपने हाथ में पकड़ ली और हमें कहा तुम इसके नीचे बैठ जाओ, तो हम तीनों हो गए। तो बड़ा रमणीक दृश्य है और मन इसमें स्वतः ही वहीं आ जाता है, और इसका अभ्यास हम 5-10 मिनट कर सकते हैं कि बाबा स्वयं छत्र बनकर हमारे ऊपर आ गया। ऐसे ही दूसरा अभ्यास था, बाबा हमेशा बोलते रहते हैं अपने को बाबा के शक्तियों के फाउंटेन के नीचे समझो, बहुत प्यारा अभ्यास है कि बाबा स्वयं हमको शक्तियां दे रहा है। हम संकल्प ऊपर से शुरू करें, हम ले रहे हैं ये पीछे कि बाबा शक्ति देने को तैयार हो गया और हमें देने लगा, और अब हमें केवल ये याद रखना है कि हम ले रहे हैं, वो स्वयं ही दे रहा है, हमें उसके लिए कुछ करना नहीं है, हम ले रहे हैं। ऐसे ही तीसरा अभ्यास, अवतार हैं हम, उसके लिए भी एक बहुत सुंदर दृश्य बनाया कि थोड़ी देर के लिए सोचो कि इस संसार में विनाश होने लगता है, चारों ओर आत्माएं चिल्ला रही हैं, पुकारने लगी है भगवान आओ बचाओ शांति दो, बहुत तनाव हो गया, और हम बाबा के पास हैं ऊपर, और बाबा हमें कहता है कि जाओ नीचे, तुम अवतार हो, शांति के अवतार और इन सब को शांति दो। और हम नीचे आ जाते हैं और हम देखते हैं कि हमारी डोर बाबा पकड़े हुए है ऊपर और हम अवतार बनकर नीचे हैं। बस हमें दृष्टि से शांति देनी है, संकल्पों से शांति देनी है, शांति के ही वाइब्रेशंस फैलाने, ये एक अभ्यास था। ऐसे ही इस बार बाबा की बार बार प्रेरणाएं हो रही हैं, सृष्टि के ग्लोब के ऊपर बैठो, सृष्टि के गोले के ऊपर बैठ जाओ, बाप बनकर बैठ जाओ। बहुत अच्छे महावाक्य ये बाबा के, कि जैसा बाबा वैसे ही तुम मास्टर बीज, मास्टर क्रिएटर, इसके ऊपर बैठ जाओ और बाबा के साथ या बाबा से लेकर सारी सृष्टि को शक्तियों की रेज दो। बहुत अच्छा एक रस है, क्योंकि मन को एकाग्र करने के लिए हमें उसे ऐसा कोई संकल्प देना होता है, जो बाबा ने इस बार एकांत को डिफाइन किया, एकांत अर्थात अपने को किसी श्रेष्ठ संकल्प में स्थित कर देना। तो ये ऐसे श्रेष्ठ संकल्प थे। ऐसे ही आत्मिक स्वरूप के लिए हम सोचते थे, हमने उसको एक नया नाम दे दिया था, आत्मदर्शन। कि हम ऐसा ही सोच लें कि हमारा इस शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है ही नहीं, जैसे तत्व तत्वों में लीन हो गए, लोप हो गए और मैं आत्मा रह गई, केवल आत्मा ही रह गई और कुछ नहीं, हम जैसे अपने को ही देख रहे हैं। ऐसे ही कुछ अभ्यासों में हमने इस दिनचर्या को बांट दिया। ये भी एक अनुभव ही है कि हमने अपने अभ्यास में अब तक भी 73 से शुरू किया था और उसमें जो जो बाबा की नई प्रेरणाएं प्राप्त होती गई वो जोड़ते गए, कि अपनी सारी दिनचर्या को हमने तो घंटे वाइज बांट दिया था, इस घंटे इसका अभ्यास, इस घंटे इसका अभ्यास, जैसे और भी अभ्यास हैं, बाबा मेरा है, केवल ये नशा मेरा फ्रेंड है, जो भी संबंध हमें प्रिय लगता हो, कभी ये नशा के बाबा मेरे साथ है, कभी बाबा से रूरिहान, कभी फरिश्ता, उसमें एक स्वदर्शन चक्र की बात भी थी, कभी स्वदर्शन चक्र का अभ्यास, कभी भविष्य का नशा, मुझे 2 साल से बहुत प्यारा लगने लगा है बाबा की बात सुन सुन के, ब्रह्मा बाबा की, कि कैसे बाबा को बहुत अधिक नशा था अपने भविष्य का जो हमें नहीं है। हम महसूस करते आए कि हमें भविष्य का नशा नहीं रहता है, और बहुत सारे नशे रहे, भविष्य का नशा जैसे चढ़ा ही नहीं। 2 साल से बहुत अधिक इस बात पर ध्यान गया, तो हमने इसको भी एक नया शब्द अपने लिए रखा कि अपने दिव्य स्वरूप का आह्वान करें हम, जो हमारा भविष्य स्वरूप है, जो दिव्य स्वरूप है, उसका आह्वान करें। और मैं कैसे करता हूँ, या कैसे मैंने इसको शुरू किया था, और बहुत अच्छा अनुभव देता है ये भी, कि हम विचार करें 5 सेकंड के लिए कि हमारा जो दिव्य स्वरूप है ऊपर है, विष्णु स्वरूप कह दें हम उसे, बहुत डिवाइन, और थोड़ी देर के लिए ये सोचें कि वो इतना दिव्य है कि सारा संसार जैसे उसकी ओर आकर्षित हो गया, साक्षात्कार होने लगता है उसका, और वो दिव्य स्वरूप नीचे उतर रहा है, हम देख रहे हैं, और हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है और हमें याद दिलाता है कि मैं तुम्हारा ही स्वरूप हूँ, तुम और मैं एक ही हैं। और फिर वो हमारा दिव्य स्वरूप इस स्वरूप में प्रवेश कर लेता है, हम दिव्य हो गए, विष्णु स्वरूप। बहुत अच्छा अनुभव होता है डिविनिटी का एक साथ। तो ऐसे ऐसे हमने तो अपनी दिनचर्या को घंटे वाइज बांटा था, तो हर घंटे में ऐसा ही एक संकल्प रख के अभ्यास करना, इससे बहुत अच्छा होता है। इसके साथ एक बात हम और अनुभव की, आत्मा देखने का अभ्यास योग के लिए पिलर है। इस बार हमने एक चित्र बनाया नया अपने पास, कि हम योगियों के लिए योग के 4 पिलर, एक पिलर जिसमें स्वमान है, दूसरा पिलर जिसका आत्मिक दृष्टि है, तीसरा पिलर बाबा से सब संबंध, और चौथा पिलर ईश्वरीय परिवार से प्यार। आत्मिक दृष्टि के साथ साक्षी भाव, हमने बहुत अच्छा अभ्यास किया, अपने ग्रुप के साथ किया, बहुत अच्छा। हम आपको वो अनुभव बताएं, 15-20 भाई, उनको काम दिया कि कल जो भी सामने आए उसको आत्मा देखना है, और बीच बीच में ये अनुभव करो 5 बार केवल कि ये संसार मानो रूहों की दुनिया है, मनुष्यलोक नहीं, ये संसार ही आत्माओं की दुनिया है। 5 बार बैठकर चाहे 1 मिनट के लिए आप कुछ क्षणों के लिए इस कॉन्शियस को बढ़ा दें कि सब आत्माएं ही हैं केवल, बहुत आनंद आया। इससे भी इसमें इसको भी योग में हमने जोड़ दिया था, क्योंकि आत्मिक दृष्टि मन को एकाग्र करती है। हमें ये एक सूक्ष्म सा सिद्धांत हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि जहां जहां हमारी दृष्टि जाती है या ध्यान जाता है, हम देख सकते हैं कि अगर हम यात्रा कर रहे हैं तो हमारी दृष्टि या हमारा ध्यान कहां कहां जाता है 5 मिनट में भी, तो उधर उधर ही हमारी मन की शक्तियां बहने लगती हैं। जिधर हमारा ध्यान गया, जिसके लिए हमने सोचा, जो हमने देखा, तुरंत हमारी मन की शक्तियां उधर बह गई, और इस तरह मन कमजोर होकर चंचल होता है, स्थिर नहीं होता है। तो स्थिर करने के लिए मन को आत्मिक दृष्टि का अभ्यास बहुत सुंदर मदद करता है हमें योग में। इस तरह मैं अब अंत में एक ही बात सुनाकर इसको समाप्त कर दूं, तो मेरे अपने इस साल के अनुभव में, जहां मैं सोचता था कि इस साल मैंने सोचा, हालांकि बाबा से प्यार तो हम सबके मन में भरा हुआ है, तभी हम समर्पित भी हुए और तभी कुछ कर रहे हैं, बाबा से प्यार तो रहा ही है, लेकिन इस बार की बाबा की मूल्यां सुन सुनकर मुझे बाबा के प्रति बहुत ज्यादा प्यार जागृत हुआ, और मेरा योग एक बार बुद्धि योग से बदलकर क्या हो गया, प्रेम योग हो गया। बहने सुनाया करती थी, मनोहर दादी हमेशा कहती थी योग में आंसू आ जाते हैं, हमें आते नहीं थे, हम कहते थे पता नहीं हम लोगों के आंसू कहाँ चले गए हैं, भाइयों को आते ही नहीं है, हैं ही नहीं अंदर या क्या है। तो इस बार बाबा के सब संबंधों की बात इतनी अधिक अंतर में उतर गई, हम लोगों ने चर्चाएं भी की, क्योंकि संबंधों में बाप टीचर सदगुरु तो हमारे हैं ही, फ्रेंड भी हमें बहुत अच्छे अनुभव में आ चुका, लेकिन जब बाबा की ये बात सुनते थे कि एक भी संबंध मिस न हो, एक भी, तो संकल्प चलता था कि एक भी में तो बच्चा भी है, उसका भी तो अनुभव करना चाहिए। और ये बात सुनकर सभी हंसते ही हैं, हम और आप सभी, कि भला हम अपना बच्चा उसे कैसे बनाएं। अभी मैं ओडिशा गया था तो एक दिन बहुत थका था, 3 दिन ऐसा हुआ कि रात और दिन की नींद जैसे हुई ही नहीं, ऐसे में ब्रेन पे बहुत प्रेशर पड़ता था। एक जगह रात को गए 12 बजे, मैंने कहा बाबा अमृत वेले आज मैं उठूंगा नहीं, मुझे छुट्टी दे दो, नहीं तो कल काम नहीं होगा, मैं 5 बजे उठूंगा, अभी कर लेता हूँ योग, 12 तो बज गए, और आप आज बच्चे के रूप में मेरे पास आकर मुझे फ्रेश कर देना। मैंने बाबा को बच्चे के रूप से ही रूहान करके और याद करके मैं सोया, और ठीक जब 5 बजे मेरी आंख खुली तो मेरे जीवन का ये पहली बार एक अनुभव था बहुत सुंदर, कि जैसे लौकिक में हम यहां भी करते हैं, जब थक जाते हैं तो दूसरे भाइयों को कह देते हैं जरा दबा दो वे सारे शरीर को, तो मैंने देखा कि 5 बजे आंख अभी खुली रही है, आधी खुली है, और जैसे मेरे शरीर को एक बच्चा ही दबा रहा है। बहुत अच्छा अनुभव था वो, बाबा बच्चे के रूप में वो कार्य कर रहा था, और बस ये क्षणिक अनुभव था, ये समाप्त हो गया और एक नए अनुभव की शुरुआत जीवन में हो गई। तो बाबा से ये प्रेम योग भी ऐसा है कि अगर वास्तविक संबंधों की गहराई को हम अनुभव करके उससे सच्चे दिल के जो दिल को जोड़ दें हम, तो ये संबंध भी वास्तव में हमें बिंदु रूप से कोई कम अनुभव नहीं देते। मेरे तो अपने यही अनुभव है, केवल बिंदु रूप नहीं, लेकिन ये सारी ही योग की स्थिति बहुत श्रेष्ठ है, विकर्म विनाश करने वाली है। जो आज बाबा ने कहा निरंतर मुझे याद करो तभी तुम विकर्माजीत बनोगे, और कोई तरीका नहीं है। तो ये सारी ही योग के अभ्यास अगर हम भिन्न भिन्न रूप से अपने जीवन में अपनाते हैं तो वास्तव में ये जीवन योगी बन जाता है। और हमने तो बहुतों के साथ ऐसे प्रयोग कराए हैं, बहुत बहने भी हैं, भाई भी हैं, विदेशी भी हैं और भारत के भी हैं, बहुत बहनों ने भी किया है और अपने जीवन को बहुत संतुष्ट बनाया है, क्योंकि योग वास्तव में संतुष्टता है जीवन की। हम सब जानते हैं सेवाओं में तो हम हैं ही, लेकिन योग अगर हमारा उतना नहीं है जितनी हमें उसकी जरूरत है तो जीवन में एक प्यास बनी ही रहती है। तो अपने फिर मैं वहीं चलकर समाप्त कर देता हूँ, कि जब हम सभी ने अपने जीवन की कुर्बानी दी है, बहुत कुछ करने के लिए समर्पित किया है अपने को, तो बाबा का बहुत बड़ा कार्य और बहुत बड़ी आज्ञाएं बाप समान बनने की हम ही पूरा करेंगे। हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? हमें ये भी सोचना चाहिए, ऐसा ना हो गृहस्थी लोग हम पर हंसें कि देखा तुम समर्पित हो गए, झंझटों से छूट गए और तुमसे अच्छे तो हम रहे। ऐसा मौका ना आए जीवन में, हम आदर्श हों संसार के लिए। तो फिर से अपने मन में अपनी कुर्बानी के महत्व को कायम रखते हुए केवल वही करेंगे जिसके लिए आए हैं। और अब फिर से हम सभी बाबा की याद में बैठेंगे, चाहे उसकी छत्र छाया के नीचे। तो मुझे तो यही बात याद आई कि बाबा की प्रेरणाएं हैं और सबको नशा भी अच्छा है, तो हमारे योग का वर्तमान स्वरूप अभ्यास नहीं दातापन का ही हो तो हम दाता बनकर ही बैठेंगे। जैसे कि सृष्टि के ग्लोब के ऊपर, सृष्टि के गोले पर हम सभी नहीं मैं हटा ही दूंगा तो सृष्टि के गोले के ऊपर सारी सृष्टि को शक्तियों का दान देंगे, तो अपने पावरफुल स्वमान में स्थित होकर बिल्कुल बाप समान हैं हम। जैसा बाबा है दाता, वैसे ही हम इस नशे में स्थित होकर बाबा से किरणें लेकर सारे ग्लोब पर फैलाएंगे। खुद भी ऐसे ही अनुभव में बैठेंगे जो बाबा ने हम सबके सामने तपस्या की परिभाषा दी है। तपस्या अर्थात हमें स्वयं से भी शक्ति और शांति की किरणें निकलती हुई अनुभव हों, तो हमें प्राप्त हो रही हैं बाबा से और हमसे निकलकर चारों ओर फैल रही हैं। बस इस एक ही संकल्प में अब हम सब बैठे।
ओम शांति।